लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट, भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस कनाडा की अपनी 6 दिवसीय प्रेरित यात्रा पर आज सुबह 9:16 पर रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से एडमॉन्टन के लिए रवाना हो चुके हैं। वे इटालिया एयरवेज विमान से करीब 10:20 यात्रा कर कनाडा के समय अनुसार सुबह 11:20 पर कनाडा पहुंचेंगे। यह इटली के बाहर संत पापा फ्रांसिस की 37वीं प्रेरित यात्रा है। संत पापा ने यात्रा शुरू करने से पहले कनाडा वासियों को ट्वीट कर कहा, कनाडा के प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपके बीच मूलवासी लोगों से मिलने आ रहा हूं। मैं ईश्वर की कृपा से उम्मीद करता हूं कि मेरी प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा मेल मिलाप की यात्रा को सहयोग देगी, जिसको पहले ही आरंभ किया जा चुका है। उन्होंने सभी लोगों से प्रार्थना का आग्रह करते हुए कहा, कृपया प्रार्थना द्वारा मेरा साथ दें। कनाडा में संत पापा का आधिकारिक स्वागत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अल्बर्टा की लेफ्टिनेंट गवर्नर सलमा लखानी करेंगे। तत्पश्चात संत पापा संत जोसेफ सेमिनरी जाएंगे एवं अपनी लंबी यात्रा के बाद विश्राम करेंगे। उनकी सार्वजनिक मुलाकातें सोमवार सुबह से शुरू होंगी। 24 से 30 जुलाई के बीच अपनी इस प्रेरित यात्रा को संत पापा ने प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा बतलाया है। उन्होंने 17 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संबोधन में कहा था,
Cari fratelli e sorelle del Canada, come sapete verrò tra voi soprattutto in nome di Gesù incontrare e abbracciare le popolazioni indigene,
कि वे देश के मूलवासी लोगों के साथ चंगा एवं मेल मिलाप की प्रक्रिया में योगदान देने की उम्मीद में कनाडा के लिए प्रायश्चित तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। वैटिकन न्यूज के संपादक अंद्रे तोर्निली ने इस यात्रा का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह देश का दौरा नहीं है, न ही कार्तिक समुदाय से मिलना इसका मुख्य उद्देश्य है, बल्कि यह मूलवासी लोगों के प्रति सामीप्य का ठोस भाव प्रकट करना है जो वहां रहते हैं और जिन्होंने उपनिवेशवाद के परिणाम का कष्ट झेला है। उपनिवेशवाद की बुराइयों में से एक था मूलवासी लोगों की संस्कृति को समाप्त करना, जो तथाकथित आवासीय विद्यालयों में पाई गई। कई संस्थान थे जिन्होंने मूलवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग करते हुए कड़े अनुशासन के साथ शिक्षा देने और उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। ये स्कूल, जिनकी मृत्यु दर बहुत अधिक थी, कनाडा सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे, जिन्होंने उन्हें वित्त पोषित भी किया था, लेकिन उनका प्रबंधन कार्तिक धर्म सामाजियों के साथ ख्रिस्ती कलीसियाओं को सौंपा गया था। चंगाई और मेल मिलाप की यह यात्रा कुछ समय पहले शुरू हुई है, जिसमें मूलभूत कदम के रूप में मार्च और अप्रैल में संत पापा फ्रांसिस ने फर्स्ट नेशन, मेथिस और इंसुइट दलों से वैटिकन में मुलाकातें की थी, पहले अलग अलग और बाद में एक साथ, तथा अतीत में जो हुआ है उसके लिए खेद एवं लज्जा प्रकट किया। मूलवासी लोगों ने मुलाकात में स्वागत किया गया और सुना गया महसूस किया, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा थी कि संत पापा उनकी भूमि का दौरा करें और उनसे क्षमा मांगें। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि संत पापा फ्रांसिस की कनाडा की प्रेरित यात्रा सबसे बढ़कर प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा होगी, जिसके द्वारा देश के मूलवासी लोगों की चंगाई और मेल मिलाप को बल मिलेगा। कनाडा में अपनी 37वीं प्रेरित यात्रा शुरू करने से 2 रात पहले संत पापा फ्रांसिस ने अपनी आदत अनुसार शुक्रवार को रोम के मरिया मेजर महागिरजाघर जाकर अपनी यात्रा को माता मरियम को समर्पित किया। उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा 56वां देश होगा जहां संत पापा फ्रांसिस यात्रा कर रहे हैं। अपने पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के पदचिन्हों पर वे इस यात्रा को कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परमाध्यक्ष काल में 3 बार कनाडा की यात्रा किए थे। ब्रूनी ने याद किया कि संत पापा फ्रांसिस 26 जुलाई को क्वीबेक के वीप्रे में संतन्ना के राष्ट्रीय तीर्थ का भी दौरा करेंगे, जहां वे अपने पूर्वाधिकारी की तरह ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। संत अन्ना मूल वासियों के लिए महत्वपूर्ण संत हैं, विशेषकर बुजुर्गों और नाना नानी के सम्मान में। येसु के नाना नानी संत अन्ना और संत जोआकिम दादा दादी एवं बुजुर्गों के संरक्षक माने जाते हैं। तीर्थस्थल में संत पापा प्रथम मूलवासी संत संत कतेरी तेकाक्विता की याद करेंगे एवं उनकी प्रतिमा की आशीष करेंगे। संत पापा की प्रेरित यात्रा कनाडा की कलीसिया एवं नागरिक अधिकारियों तथा कनाडा के मूलवासियों के निमंत्रण का प्रत्युत्तर है। प्रेरित यात्रा का आदर्श वाक्य है एक साथ चलना। प्रत्येक चिन्ह में एक चक्र है जो कनाडा के समुदाय एवं क्षेत्र को दर्शाता है। चक्र एक वृत्ताकार प्राकृतिक जीवन का आह्वान करना और इससे जुड़े तत्व जैसे सूर्य पृथ्वी और जल को जागृत करना चाहता है। विभिन्न प्रतीकों के बीच शीर्ष पर शांति का कबूतर दिखाई देता है, उसके ठीक नीचे संत पेत्रुस की चाबी है।
Viaggio molto desiderato e al centro del quale ci sarà l'abbraccio con le popolazioni indigene e con la chiesa locale.
शनिवार को वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने कहा, मैं कहूंगा कि सामीप्य ही मूल शब्द है। संत पापा न केवल शब्दों को बोलना चाहते हैं, बल्कि उनके निकट आना और ठोस रूप से अपने सामीप्य को व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों के दुखों को खुद अपने हाथों से स्पर्श करने, उनके लिए प्रार्थना करने और उनके बीच अपने आप को एक तीर्थयात्री बनाकर वे वहां जा रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की तीर्थयात्रा के दौरान विमान से ताज संदेश भेजा और शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परंपरा के अनुसार विमान से उड़ान भरते हुए उन देशों को अपना ताज संदेश भेजा जिनके ऊपर से होकर वे कनाडा की यात्रा हेतु आगे बढ़े। उन्होंने इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के नेताओं को संदेश भेजा। ये था संत पापा फ्रांसिस की कनाडा में प्रेरित यात्रा पर संक्षिप्त रिपोर्ट। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है दया उसकी सदा है, वो कितना भला है स्तुति उसकी सदा है, वो कितना अच्छा है दया उसकी सदा है, वो कितना भला है स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका अति आत्मविश्वास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हम सभी का जीवन एक बहती नदी के समान है। जीवन रूपी नदी हमेशा एक ही स्पीड में नहीं बहती, कभी धीमी तो कभी तेज बहाव रहते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो जीवन की गति को पहचानता है और उसी के अनुसार खुद को आगे बढ़ाता है ताकि सफलता हासिल की जा सके। और सफलता का मूल मंत्र है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और अगर किसी में अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस हो तो यह बहुत घातक और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देने वाला होता है। कोई व्यक्ति अति आत्मविश्वास का शिकार है, इसे हम इन बातों से पता लगा सकते हैं। अति आत्मविश्वासी समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सोचता है कि वह गलत हो ही नहीं सकता और गलत कार्यों को सही मानकर करता चला जाता है। उसके जुबान में आई नो, आई एम राइट, आई एम द बेस्ट, अरे मुझे मालूम है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह सुनने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति के अति आत्मविश्वास से अति को निकालने के लिए परिवार वालों और सच्चे मित्रों का मार्गदर्शन चाहिए जो उसे चुनौती दे सके और धीरे से वो अपनी असफलताओं से सीखकर अति को अपने जीवन में निकाल सकेगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अति आत्मविश्वास।
अगले महीने याद है ना, बिट्टू की शादी में चलना है।
अगला महीना तो आने दो, फिर देखेंगे जाना भी है या नहीं।
अरे
ठीक है होने तो दो, चलेंगे।
हाँ पापा जरूर चलेंगे, खूब मजा आएगा। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने परिवार में किसी की शादी नहीं निकल रही है, अब बिट्टू भैया की शादी निकली है तो खूब मजा करेंगे।
तुम्हें कॉलेज से छुट्टी मारनी पड़ेगी, सोच लो मीनल बेटी।
आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कॉलेज से छुट्टी मारती ही नहीं है।
अरे मम्मी, एक आध दिन की छुट्टी भी कोई छुट्टी होती है, शादी के लिए तो कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी मारनी ही पड़ेगी।
देखो ना, देखते देखते ही आज बिट्टू शादी के लायक हो गया है, एक कंपनी में मैनेजर भी हो गया है।
मगर एक हमारे रवि को देख लो तुम, क्या कर पाया आज तक वह, पढ़ लिख कर भी, उसे आज तक एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिली।
पापा परसों फिर उसका एक जगह इंटरव्यू है।
हाँ मुझसे भी कह तो रहा था कि कहीं पर उसका इंटरव्यू है,
मगर मुझे तो बताया नहीं उसने।
भैया सोचता होगा कि शायद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब फाइनल ही बताएगा।
मगर फिर भी मीनल, उसे तुम्हारे पापा को तो बताना ही चाहिए था ना।
चलो नीता, उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मगर इंटरव्यू के लिए उसकी तैयारी वगैरह तो चल रही है ना।
कर तो रहा होगा तैयारी।
कोई नहीं मम्मी, भैया कह रहा था कि वो कोई तैयारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब की भी क्या तैयारी करना, ऐसे ही कुछ।
अरे फिर भी कुछ तैयारी तो उसे करनी चाहिए ना।
बिल्कुल करना चाहिए, वरना वहाँ उससे कुछ पूछा जाएगा तो क्या बगले झांकेगा वो।
भैया का कहना है कि उसे आइडिया है कि वे लोग उससे क्या क्या पूछेंगे और उसे सब कुछ आता है।
अति आत्मविश्वास, नीता हमारे बेटे में इतना अधिक आत्मविश्वास अच्छा नहीं है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास।
मैंने भी भैया से यही कहा था पापा, लेकिन उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा कि मैं इतना गया बीता नहीं हूँ, मैं भी नॉलेज रखता हूँ। सचमुच पापा, भैया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है।
शायद उसे पता नहीं बेटा कि ऐसे लोग जीवन में कहीं भी नहीं पहुँच पाते हैं, उनका अति आत्मविश्वास ही उनको ले डूबता है।
बिल्कुल सही कहा आपने, रवि बेटे को कुछ तो तैयारी करनी ही चाहिए। कहाँ है वो?
मम्मा वो उसका कोई फ्रेंड आया था, उसी के साथ कहीं गया है।
इस लड़के ने तो हद कर दी भाई, नौकरी क्या ऐसे ही मिल जाती है क्या?
इसी से पता चलता है कि हमारे बेटे को नौकरी करने और उसे पाने की कितनी लगन है।
सही है पापा, भैया हर इंटरव्यू कॉल को बहुत ही राइटली ले लेता है, हर बार यही कहता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये नौकरी मुझे ही मिलेगी।
और मिलता क्या है उस लड़के को?
मैंने कहा तो है कि उस जैसे अति आत्मविश्वास वाले को कुछ भी नहीं मिला करता।
मतलब ये कि इस इंटरव्यू में भी भैया की नौकरी टावाडोल ही दिखाई पड़ रही है।
अब वो तो देख ही रहा है मीनल बेटी।
वो आए तो उससे कहना मुझसे बातें करे।
एक तो वो घर में टिकता भी नहीं।
किसी भी हालत में घर तो आएगा। शाम हो गई, रवि अब तक नहीं आया या अपने कमरे में सो रहा?
अभी तक तो नहीं आया पापा।
ये लड़का भी आवारा हो गया लगता है औरों की तरह।
पापा भैया आ रहा है।
रुको रवि, बैठो यहाँ।
कहिए पापा।
क्यों बेटा, तुमने पापा को नहीं बताया कि परसों तुम्हारा इंटरव्यू है?
अब उसमें बताने जैसा क्या है मम्मी, नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही बता दूंगा ना।
मगर इंटरव्यू भी तो नौकरी पाने की पहली सीढ़ी है ना बेटा, तो फिर
इंटरव्यू का क्या है पापा, अब तक कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे अब तो इंटरव्यू देने का।
अब तक तुम सिर्फ इंटरव्यू देने का ही अनुभव जमा करते रहे हो, कभी नौकरी पा लेने का अनुभव भी हुआ है तुम्हें?
नौकरी पाने का अनुभव तो नौकरी पाकर ही होगा ना पापा।
और नौकरी मिलती है इंटरव्यू की तैयारी करने से।
अब नौकरी के इंटरव्यू की क्या तैयारी करूं पापा, कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, सब एक जैसा ही पूछते हैं।
कभी कभी अलग भी पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी और लोग अलग होते हैं, वे अपनी कंपनियां उससे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं।
पापा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं तैयारी कर लेता हूँ, वैसे भी इंटरव्यू परसों है।
जा बेटा आराम से तैयारी कर, देखो अब तो गुस्सा थूक दो, कह रहा है कर लेगा तैयारी।
वो तुम्हें बहला सकता है, मुझे नहीं। रवि कहाँ है नीता?
भैया मुंह धोकर आ रहा है।
इस लड़की ने उस दिन इंटरव्यू में क्या हुआ बताया ही नहीं।
वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
हाँ बेटा, उस दिन कैसा रहा इंटरव्यू?
अच्छा ही रहा होगा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही।
सॉरी पापा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा।
क्यों क्यों अच्छा नहीं रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुमने तो मेरे कहे अनुसार तैयारी भी खूब की होगी, नहीं क्या?
नहीं पापा, मैंने आपको टालने के लिए आपको झूठ कहा था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी।
तो फिर पापा से झूठ बोलने का कारण?
वही हतिया आत्मविश्वास।
हाँ पापा, काश मैं आपकी बात मान लेता और अपने अति आत्मविश्वास में न होता तो जरूर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता पापा।
तुम्हारे साथ आए उम्मीदवारों ने तो तैयारी की थी या वे भी तुम्हारी तरह ही अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे?
नहीं पापा, उनमें से लगभग सभी ने इंटरव्यू देने की पूर्ण तैयारी कर रखी थी।
देखो बेटा, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा था, अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है।
हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता और ना ही करना चाहता है, क्योंकि उसे तो ये गुमान होता है कि मुझे कुछ भी पहले से करने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ।
बेटा, जीवन में आत्मविश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास का होना किसी भूल में रहना ही कहा जाएगा।
सुन लिया भैया?
मुझे इंटरव्यू में अपनी नाकामी से अच्छा सबक मिल गया है पापा, अब मैंने आज के बाद यह ठान लिया है कि आत्मविश्वास बनाए रखूंगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से हमेशा दूर रहूंगा।
हाँ बेटा, क्योंकि ये अति आत्मविश्वास ही तो होता है जो व्यक्ति को हर बात को हल्के रूप में लेना सिखाता है और लापरवाह बना देता है।
नहीं मम्मी, अब ऐसा नहीं होगा, अपनी नाकामी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है।
इसी को कहते हैं बेटा, जब जागे तब सवेरा।
अति आत्मविश्वास, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे आस्था उपमन्यु, पीटर जमरा, अंतरा करवड़े और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।